आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जबान की बंदिशों को तोड़ना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हुकूमत हर जबान को असल धारे की आवाज समझती है। वजारत खारजा ने कहा है कि यूएस एड फंडिंग से मुतालिक बयानात परेशान कुन हैं और गैर मुल्की मुदाखलत के तल्लुक से तशवीश बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के अपने हम मनसब से मुलाकात की। हमास ने इसराइल के साथ जारी जंग मुआहदे के हिस्से के तौर पर आखिरी 6 यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक की है। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में जुनूबी अफ्रीका ने कराची में अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 316 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जबान की पाबंदियों को खत्म करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने उजागर किया कि महाराष्ट्र के बहुत से संतों ने मराठी जबान में भक्ति तहरीक के जरिए मुआशरे को एक नई राह दिखाई है।
जब भारत को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत हुई तो महाराष्ट्र के महान संतों ने ऋषियों के ज्ञान को मराठी भाषा में सुलभ कराया। महाराष्ट्र के कितने ही संतों ने भक्ति आंदोलन के जरिए मराठी भाषा में समाज को नई दिशा दिखाई।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत हर एक जबान को असल धारे की आवाज समझती है। उन्होंने वाजे किया कि भारतीय जबानों के माबैन कभी भी कोई रस्साकशी नहीं रही है, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को दुआम बख्शा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1878 से अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मुल्क के 147 साल सफर का एक गवाह रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक़िद की जा रही है जब कौम छत्रपति शिवाजी महाराज के जश्न ताजपोशी के 350 साल की तकरीबात मना रही है।
ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं।
तीन रोजा ये सम्मेलन पैनल मुबाइसों, किताबों की नुमाइश, सकाफती पेशकश और सरकर्दा अदबी शख्सियात के साथ तामुली मुबाइसों के एक मुतनवे सिलसिले की मेजबानी करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क के इंतखाबी अमल में मुदाखलत करने के लिए बैरूनी कुव्वतों से मदद हासिल कर रही है। आज पार्टी के हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब करते हुए पार्टी के लीडर गौरव भाटिया ने कहा कि अमरीकी इमदाद इंतखाबी अमल में मुदाखलत करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।
द पार्टी इन ऑपोजिशन द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी हु हैव टेकन ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व the integrity and sovereignty of our country are indulging in anti-India activities and acting as a stimulus for anti-India forces to interfere in the pure and pristine electoral process of our country.
इस दौरान कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि एक झूठा बयान फैलाया जा रहा है कि 21 अरब डॉलर की अमरीकी इमदाद नरेंद्र मोदी सरकार को गैर मुस्तहकम करने के लिए ली गई थी। उन्होंने दावा किया कि ये रकम बांग्लादेश के एनजीओस को गई है। वजारत खारजा ने आज कहा है कि यूएस एड फंडिंग के बारे में हालिया बयानात परेशान कुन हैं और ये भारत के अंदरूनी उमूर में बैरूनी मुदाखलत के बारे में तश्वीश पैदा करते हैं। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका महकमे और एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। उन्होंने ये बात यूएस एड फंडिंग से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कही।
We have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage.
وزارت خارجہ نے کہا کہ پاناما میں بھارتی مشن ان بھارتی باشندوں سے متعلق مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے جنہیں امریکہ سے واپس بھیجنے کی پروازوں پر پاناما اور کوسٹا ریکا پہنچایا گیا ہے۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ وہ اس بات کو صاف کرنے کے لیے تفصیلات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آیا کے متعلقہ افراد بھارتی ہیں یا نہیں۔ ان امریکی پروازوں سے متعلق جو بھارتی باشندوں کو امرتسر لا رہی ہیں، ترجمان نے کہا کہ بھارت نے امریکی حکومت کے ساتھ اپنی تشویش مشترک کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نئی دلی نے اس بات پر زور دیا کہ جن افراد کو باہر نکالا جا رہا ہے ان کے ساتھ انسانی برتاؤ کیا جائے اور یہ کہ ان کے مذہبی جذبات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ جناب جیسوال نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی حکومت ملک میں تمام بین الاقوامی طالب علموں کے تحفظ، حفاظت اور بہبود کو اعلیٰ ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے ایک نیپالی لڑکی کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے، وزارت اڈیشہ سرکار اور کے آئی آئی ٹی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
We are deeply saddened by the tragic death of the Nepalese student at the Kalinga Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar. We convey our heartfelt condolences to the grieving family. We have also maintained close contact with the Nepalese authority. Pursuant to our outreach, several steps have been taken by the Odisha government as well as the KIT Institute to address the situation.
وزیراعظم نریندر مودی اس اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 119واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ کے تمام تر نیٹورک پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یو ٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریے کے فوراً بعد اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ جاپان بھارت کی اقتصادی ترقی میں ایک کلیدی ساجیدار رہا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا پانچواں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نئی دلی میں بھارت جاپان اقتصادی اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ جاپان سے غیر ملکی راس سرمایہ کاری سال 2000 اور 2024 کے درمیان 43 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ بھارت اور جاپان کے درمیان بھائی چارے، جمہوریت، ثقافت اور اقتصادی تعاون کے شعبے میں اہمیت کی حامل گہری شراکت داری ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ کاشی تمل سنگمم گوناگونیت میں ہمارے اتحاد اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو مستحکم کر رہا ہے۔ آج وارانسی کے نمو گھاٹ پر کاشی تمل سنگمم کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ کاشی تمل سنگمم تمل ناڈو اور کاشی کو اور نزدیک لایا ہے جو ہماری تہذیب کے لافانی مراکز ہیں۔
آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے واز لانچڈ ان 2018 ود این آبجیکٹیو آف اچیونگ یونیورسل ہیلتھ کوریج۔ اٹ از دی ورلڈز لارجسٹ ہیلتھ کوریج اینڈ ہیلتھ ایشورنس اسکیم آفرنگ کمپریہنسو سیکنڈری اینڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹلائزیشن بینیفٹس اپ ٹو 500,000 پر فیملی اینولی۔ ریسنٹلی دا اسکیم ہیز ایکسٹینڈیڈ ٹو انکلوڈ آل سینئر سٹیزنس آف 70 ایئرز اینڈ ابو ارسپیکٹو آف سوشیو اکنامک اسٹیٹس۔ مور دین 610 million بینیفیشریز، دیٹ از اباؤٹ 40% آف انڈیاز پاپولیشن، آر کورڈ انڈر دا اسکیم۔
اس سے قبل جناب نڈا نے بی ایچ یو کے میڈیکل سائنسز کے ادارے کے حکام کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ مرکزی وزیر نے کاشی وشوناتھ مندر میں درشن کیے اور پوجا ارچنا کی۔ بھارت اور بیرون ملک کی ثقافت، آرٹ اور ہنر کا سنگم ہریانہ کا 38واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلہ اپنی گوناگونیت کی وجہ سے ہر ایک کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ میلے کا دورہ کرنے والی ایک خاتون انکتا نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ میلے کے اپنے تجربات بیان کیے۔ ہریانہ سیاحتی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سنیل کمار نے بتایا کہ اس سال 44 ملکوں کے 600 سے زیادہ دستکار میلے میں شرکت کر رہے ہیں اور 1,200 اسٹال قائم کیے گئے ہیں۔ پوسا کرشی وگیان میلہ 2025 کل نئی دلی میں منعقد کیا جائے گا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان میلے کا افتتاح کریں گے۔ 3 روزہ میلے کا موضوع انت کرشی وکست بھارت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ और अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। इस महीने की 26 तारीख को होने वाली महाशिवरात्रि के लिए जो प्रयागराज में महाकुंभ का आखिरी दिन है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार आज महाकुंभ इलाके पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
The Mahakumbh is now in its final phase with the last important holy dip to be held on the occasion of Mahashivratri. More than 1 crore devotees are reaching the Mahakumbh every day.
महाकुंभ मेला अब अपने आखिरी मराहिल में है। अहम और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। 1 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगाने के लिए रोजाना महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसके पेशे नजर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कश्ती के जरिए संगम घाटों का मुआयना किया और सफाई सुथराई और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आखिरी दिन डुबकी लगाने, ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने, भीड़भाड़ के बंदोबस्त और खत्म हफ्ते की भीड़ से निमटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज से आदर्श और अभिषेक कपिल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए समीर रजवी।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इस बात पर जोर दिया है कि अपनी क़यादत को बरकरार रखने के लिए G20 को मुकम्मल तौर पर आलमी चैलेंजों का बिल्कुल दुरुस्त अक्कास होना चाहिए। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 2025 के लिए G20 के मकासद से मुतालिक G20 वज़राए खारजा की मीटिंग के इजलास के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने जोर दिया कि G20 को मुकाबले की जरूरियात की बजाय तआवुन के तौर पर तरीकों को मुकदम रखना चाहिए। कुदरती तबाही से मुतालिक बैन अल-अक़वामी इंतजाम पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत तैयारी, हंगामी इकदाम, बचाव और तामीर नौ के लिए मुस्तहकम लाए अमल की हिमायत करता है। भारत ने तबाही से मुतालिक लचकदार ढांचे के लिए इत्तेहाद CDRI की पहल 2019 में की थी। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि आज CDRI में 42 ममालिक और 7 तंजीमें इसके अराकीन के तौर पर शामिल हैं। हमास ने उन हालिया इसराइली यरगमालियों के नामों का ऐलान किया है जिन्हें रिहा किया जाएगा। यह ऐलान फिलिस्तीनी ग्रुप के इस एतराफ पर बढ़ते हुए गुस्से के माबैन किया गया है कि उसने श्री बेबास के बजाय किसी दूसरे शख्स की लाश सौंपी है। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की है कि यरगमालियों के अहल खाना को उनकी रिहाई के बारे में मुतला कर दिया गया है। इसी दौरान खलीज के तमाम 6 मुल्कों के अरब लीडर आज सऊदी अरब की राजधानी में मीटिंग कर रहे हैं जिसमें वो अमरीकी कंट्रोल के तहत गजा की तामीर नौ करने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़िया तजवीज से मुतालिक हिकमत अमली तय करेंगे। ये तबादला ख्याल अगले महीने अरब सरबरा कॉन्फ्रेंस से कबल मिस्र और उर्दून के लीडरों के साथ किया जा रहा है। भारत ने टेलीकॉम, मस्नुई जहानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के कलीदी शोबों में बरतानिया के साथ अपने तआवुन को तौसी दी है। टेलीकॉम के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने बरतानिया का दौरा किया और कौमी साइंसी मुशीर क्रिस जॉनसन से मुलाकात की। मवासलात की वजारत ने कहा कि इस दौरे ने टेलीकॉम और डिजिटल बुनियादी ढांचे में इख्तरा को आगे बढ़ाने के भारत और अमरीका के मुश्तरका अहद को मुस्तहकम किया है। भारत ने आज बांग्लादेश से खलीज बंगाल बैन हुकूमती तंजीम BOBP IGO की सदारत कबूल की। ये तकरीब मालदीव के माले में 13वीं हुकूमती काउंसिल मीटिंग में अंजाम पाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप 8 के एक मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 316 रन का निशाना रखा है। ये मैच कराची में खेला जा रहा है। आखिरी खबरें मिलने तक अफगानिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए हैं। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जबान की बंदिशों को तोड़ना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हुकूमत हर जबान को असलधारे की आवाज समझती है। वजारत खारजा ने कहा है कि USAID फंडिंग से मुतालिक बयानात परेशान कुन हैं और गैर मुल्की मुदाखलत के ताल्लुक से तश्वीश बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के अपने हममनसब से मुलाकात की। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने कराची में अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 316 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।